अंशु कहाँ है? उसका सवाल सुनकर अब तो छाया की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। घबराहट के मारे उसे पसीने आने लगा। शान उसको गुस्से से घूर रहा था तो उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, वो भैया अंशु बेबी। अंशु आरवी के साथ उनके घर गई है। अचानक ही इस आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किचन के सामने ही अर्पिता जी खड़ी थी। उन्हें देखकर छाया की जान में जान आई, वरना बेचारी बुरी तरह डर गई थी कि आज तो वो शान के हाथों मर ही जाएगी। उनका जवाब सुनकर शान की आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। वो भड़कते हुए बोला, किसने हक दिया उसे मेरी बेटी को अपने साथ कहीं भी लेकर जाने का? हक तो खुद आपने दिया है उन्हें। वो माँ है अंशिका की, तो उन्हें हक है उनसे जुड़े फैसले करने का, उतना ही जितना आपका है। वैसे भी वो अपनी मर्जी से नहीं लेकर गई है। अंशु उन्हें छोड़ नहीं रही थी और उन्हें जाना था तो हमने ही उन्हें अंशु को लेकर जाने को कहा। अर्पिता जी ने बड़े आराम से जवाब दिया। उनके चुप होते ही सुयश जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, और हमने उन्हें इजाज़त दी थी अंशु को अपने साथ लेकर जाने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बात कीजिए। बड़े पापा आज अंशु को उसके साथ कैसे भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते? वो पत्नी है आपकी, अंशु की माँ है। सुयश जी का सवाल सुनकर शान ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली पर बोला कुछ नहीं। अब उन्होंने आराम से कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे फैसले का आदर करेंगे। बस एक रात की बात है, कल सुबह जाकर उन्हें वापस ले आइएगा। शान गुस्से में सुभाष जी के कमरे की तरफ चला गया। सबने चैन की सांस ली। अगर सही वक्त पर सुयश जी नहीं आते तो आज सब बुरे फंसने वाले थे। वो तो शान के ऑफिस से निकलते ही रेहान ने उन्हें फोन कर दिया था, तो वो भी जल्दी से घर के लिए निकल गए, क्योंकि ऐसे तो शान कभी अर्पिता जी की बात भी नहीं काटता था। पर यहाँ बात अंशिका की थी, और आरवी को अर्पिता जी ही इस घर में लाई थी, और वो तो उन्हें पहले ही कह चुका था कि आगे उनकी कोई बात नहीं मानेगा, तो उससे कोई उम्मीद ना रखे। पर आज तक उसने कभी भी सुयश जी की बात नहीं काटी थी, इसलिए रेहान को विश्वास था कि आज भी वो उनकी बात नहीं टालेगा, और हुआ भी वही। शान कुछ देर उनके साथ बैठकर उनसे बात करता रहा, फिर सबने डिनर किया। हालांकि शान को अंशिका के बिना खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाली खाली लग रहा था। वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ गया। सुभाष जी को कुछ देर बाहर गार्डन में घुमाने के बाद वो रूम में पहुंचा और उन्हें दवाई खिलाकर अच्छे से बेड पर बिठा दिया। सुभाष जी ने टेबल पर रखी नॉवल उठाकर उसके तरफ बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये नॉवल पूरी हो गई, मैं दूसरी ला देता हूँ। इतना कहकर शान उनके हाथ से नॉवल लेकर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में दो नॉवेल्स थीं। उसने एक उन्हें दी और दूसरी खुद लेकर उनके पास ही बैठ गया। कुछ देर दोनों बुक पढ़ते रहे, फिर शान उनके पास ही सो गया। अगली सुबह उसकी नींद 5 बजे ही खुल गई। सुभाष जी अभी भी सो रहे थे तो शान उठकर बाहर चला गया। शाम को उनका ध्यान रखने को कहा और अपने कमरे में जाकर नहाकर तैयार होने लगा। अभी घड़ी ने 6 ही बजाए थे कि शान जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में पहुंचा और तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। पीछे से गुजरती अर्पिता जी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने हैरानी से पीछे से उसे रोकते हुए कहा, शान आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? उनके सवाल को सुनकर शान के कदम रुक गए। वो उनकी तरफ पलटा और हमेशा वाले गंभीर चेहरे के साथ बोला, अंशु को लेने जा रहा हूँ। अर्पिता जी चौंक गई, इतनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बाद चले जाइएगा, और अंशु के साथ आरवी भी आएगी तो कुछ देर रुककर चले जाइएगा। ऐसे सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगी तो क्या सोचेंगी अनुपमा? उनकी बात सुनकर शान की भौहें इकट्ठी हो गईं। उसने रौबदार आवाज में कहा, कौन क्या सोचता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबने मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे वहाँ भेज दिया है, और अब मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ। आपकी एक बात मान ली थी, नहीं गया रात को उन्हें लेने, लेकिन अब और देर मैं उससे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। और मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। अंशु को ले आइए, आरवी को वहीं छोड़ दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी बड़ी मार की दोस्त के नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, पर आपको किसी बात से कहाँ फर्क पड़ता है? जाइए, साबित कीजिए कि हमने आपको यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों का सम्मान मत करो, रिश्तों का निरादर करो, क्योंकि हमने आपको यही तो सिखाया है। उन्होंने इमोशनल होने का नाटक किया। उनकी बात सुनकर शान ने चिढ़ते हुए अपना चेहरा फेर लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, इतना इमोशनल नाटक करने की जरूरत नहीं है, आपकी बहू को ले आऊंगा, पर सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, कुछ गलत मत सोचिएगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया और पीछे खड़ी अर्पिता जी के लबों पर विजयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने मुस्कुराकर खुद से कहा, देखिएगा बहुत जल्द आप इस रिश्ते को दिल से निभाने लगेंगे, हमारे लिए नहीं खुद के और आरवी के लिए इस रिश्ते को अपनाएंगे। वो लबों पर मुस्कान सजाए किचन की तरफ बढ़ गई। शान फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। सुबह का वक्त था तो सड़कें एकदम खाली थीं। लगभग आधे घंटे के अंदर ही वो आरवी के घर पहुंच गया। गेट के आगे जाकर गाड़ी रुकी और शान ने बाहर कदम रखा। वहां बाहर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे थे और सब आंखें बड़ी बड़ी करके शान और उसके ब्लैक चमचमाती रेंज रोवर गाड़ी को देख रहे थे।
शान का व्यक्तित्व था ही इतना आकर्षक, कमाल की पर्सनालिटी थी उसकी, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। उसके चलने के ढंग से लेकर चेहरे पर सख्त भाव सब उसके रुतबे को दिखाते थे। शान ने डोरबेल बजाई। अभी मुश्किल से 7:30 हो रहे थे। अंशिका ऊपर रूम में सो रही थी और आरवी किचन में काम कर रही थी। अनुपमा जी घर पर नहीं थी, सुबह सुबह मंदिर चली गई थी। डोरबेल बजी तो आरवी अपने हाथ धोकर किचन से बाहर आने लगी। तब तक एक बार फिर डोरबेल बजी तो उसने आते हुए तेज आवाज में कहा, रुको, खोल रही हूँ। उसकी आवाज सुनकर शान के डोरबेल बजाने के लिए उठा हुआ हाथ हवा में ही रह गया। उसने हाथ नीचे कर लिया और इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद ही दरवाजा खुला। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी। आरवी ने लाइट पर्पल कलर की सुंदर सी ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। पल्लू को कमर पर खौसा हुआ था। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। बीच की मांग में सुर्ख लाल सिंदूर चमक रहा था। माथे पर छोटी सी स्टोन वाली पर्पल बिंदी और लबों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। किचन में काम करने की वजह से माथे पर पसीने की बूंदे मोतियों से चमक रही थी। उसकी सादगी में भी उसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। जहाँ शान की नजरें एक पल को आरवी पर ठहर सी गई थी, वहीं शान को वहां देखते आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं और वो आंखें फाड़े उसे देखते हुए हैरानी से बोली, आप यहाँ इस वक्त?